नमस्कार भारत, 11 अप्रैल दिन सोमवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। केरल के कोल्लम में एक मंदिर में आग लगने की घटना की न्यायिक जांच के आदेश, मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा, पीएम मोदी ने किया घटना स्थल का दौरा।
भारत सरकार पूरी तरह इस दुख की घड़ी में उन परिवारों की, सरकार की, केरल की जनता की साथ रह करके पूरी मदद करेगी।
पश्चिम बंगाल और असम में आज दूसरे चरण का मतदान, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी, नीतीश कुमार बने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष, शरद यादव ने कहा कोई मतभेद नहीं।
हम दोनों के बीच में कोई फर्क है क्या? मैं यदि मान लो स्टेप डाउन करूंगा तो नेचुरल वे में हमारी पार्टी की जो तासीर है, जो जनाधार है, उसमें तो मेरा विकल्प नीतीश ही हो सकते हैं।
सुनवाएंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। दक्षिणी राज्य केरल में पुलिस ने कहा है कि कल एक मंदिर में आग लगने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में आपराधिक जांच शुरू हो गई है। ये आग उस वक्त लगी जब मंदिर में एक उत्सव के दौरान आतिशबाजी के समय एक चिंगारी पटाखों के ढेर पर जा गिरी। इससे वहां बड़ा धमाका हुआ। अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन ने पारावूर के पुतिंगल मंदिर में आतिशबाजी की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन वहां मौजूद भीड़ के दबाव में ये आतिशबाजी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटनास्थल का दौरा कर हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। भारत में किसी तरह के जानमाल की कोई सूचना नहीं है, जबकि पाकिस्तान में 3 लोगों के मारे जाने और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। ये भूकंप 6.6 तीव्रता का था और इसका मूल केंद्र अफगानिस्तान के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में था। लातिन अमरीकी देश पेरू में राष्ट्रपति चुनाव के एग्जिट पोल से संकेत मिलता है कि काइको फुजीमोरी ने वोटिंग का पहला चरण जीत लिया है, लेकिन उन्हें मिलने वाले वोट 50% नहीं है। ऐसे में उन्हें दूसरे दौर के चुनाव का सामना करना होगा। फुजीमोरी पेरू के पूर्व राष्ट्रपति एल्बर्टो फुजीमोरी की बेटी हैं, जो अभी मानवाधिकारों के हनन के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। काइको फुजीमोरी के समर्थकों को उनकी जीत की पूरी उम्मीद है।
Los resultados que se están dando ahora en la televisión solamente es una boca de urna, pero sabemos que en el conteo
जो भी नतीजे आप टीवी पर देख रहे हैं, ये तो बस एग्जिट पोल के नतीजे हैं। जब सारे मतों की गिनती हो जाएगी तो हम 50% से ज्यादा मतों को पार कर जाएंगे, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत लंबे समय से काम किया है। ये थे काइको फुजीमोरी के एक समर्थक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यमन में सरकार समर्थक बलों और विद्रोहियों के बीच एक साल से जारी लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाला युद्ध विराम लागू हो गया है। इस संघर्ष में सरकारी बलों को जहां सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का समर्थन प्राप्त है, वहीं हूती बागियों के साथ ईरान है। दोनों पक्षों ने युद्ध विराम को तोड़ने की पहल न करने का संकल्प लिया है, लेकिन यह भी कहा है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो जवाब देंगे। लड़ाई को खत्म करने के लिए इसी महीने कुवैत में शांति वार्ता शुरू होनी है। सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च का कहना है कि इस्लामिक स्टेट ने जब पिछले साल अगस्त में अल कारियातिन शहर पर कब्जा किया तो 21 ईसाइयों की हत्या कर दी थी। ये लोग उन 300 ईसाइयों में शामिल थे जो शहर पर आईएस का कब्जा होने के बाद वहां से नहीं भाग पाए थे। पिछले हफ्ते ही रूस के समर्थन से सीरियाई बलों ने इस शहर पर फिर से अपना नियंत्रण कर लिया है। बीबीसी समाचार।
तारीख 11 अप्रैल दिन सोमवार, स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। केरल के कोल्लम में एक मंदिर में आतिशबाजी के दौरान लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 108 तक जा पहुंची है। घायलों की संख्या 400 के आसपास है। घायलों का इलाज आसपास के कई अस्पतालों में चल रहा है। राजधानी तिरुवनंतपुरम के अस्पतालों में भी कई घायलों को भर्ती कराया गया है। ऐसे ही एक अस्पताल से लौटकर आई दिव्या आर्या ने तिरुवनंतपुरम से ये रिपोर्ट भेजी है।
मैं शकुंतला की बात नहीं समझ पा रही थी, मुझे मलयालम नहीं आती, पर उन्हें मानो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो। आंसुओं की पतली धारा और बदहवासी के बीच वो अपनी बात कहती चली जा रही थी। तिरुवनंतपुरम मेडिकल अस्पताल में दाखिल मंदिर की आग से झुलसे लोगों के परिजनों का कुछ ऐसा ही हाल था। आखिर किसी की मदद से अनुवाद हुआ तो पता चला कि शकुंतला का 14 साल का बेटा 90% से ज्यादा जल गया है। शकुंतला कह रही थी कि रविवार सुबह वो तो घर पर थी, पर बेटा मंदिर की छत से आतिशबाजी देख रहा था कि धमाका हो गया। वो हर जगह से जल गया, शरीर का हर हिस्सा। अब वो क्या करेंगी? कोल्लम में मंदिर में लगी आग में घायल हुए 300 लोगों में से करीब 100 लोग राजधानी तिरुवनंतपुरम के इस अस्पताल में इलाज के लिए आए हैं। इनमें से सबसे गंभीर चोट वाले लोग बर्न्स आईसीयू में हैं। प्लास्टिक सर्जरी के विभाग की प्रमुख डॉक्टर कोमल रानी बताती हैं, कोमल रानी के मुताबिक अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। हादसे के कुछ ही घंटों में इन लोगों को यहाँ ले आया गया, लेकिन पूरे शरीर का बड़ा हिस्सा जलने की वजह से इन सब की हालत बहुत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल के कई वार्ड्स में पर्दे लगाकर मरीजों को अलग अलग रखा गया है। सुरक्षा के भी खासे इंतजाम हैं। रविवार के दिन यहाँ राजनेताओं का तांता लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ का दौरा किया। इस बीच केरल सरकार ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री उमन चांडी ने 10 लाख और प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाने का ऐलान किया है।
भारत सरकार पूरी तरह इस दुख की घड़ी में उन परिवारों की, सरकार की, केरल की जनता की साथ रह करके पूरी मदद करेगी।
लेकिन आर्थिक मदद की इन सभी कोशिशों के बीच शकुंतला जैसे परिजनों को उम्मीद की जगह अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। वो तो बस ये जानना चाहती हैं कि क्या उनका बेटा फिर स्कूल जा पाएगा। दिव्या आर, BBC, तिरुवनंतपुरम।
खबर सच है अगर BBC पर है।
असम विधानसभा चुनाव के तहत आज दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होना है। इस चरण में 61 विधानसभा सीटों के लिए मत डाले जाएंगे। सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और मतदान व्यवस्थित तरीके से हो, इसलिए चुनाव आयोग ने भी बड़ी तैयारी की है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।
पूर्वोत्तर राज्य असम में आज दूसरे चरण के तहत विधानसभा की 61 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। असम में विधानसभा की कुल 126 सीटें हैं और इससे पहले 4 अप्रैल को प्रथम चरण के तहत 65 सीटों पर मतदान हुआ था। राज्य सरकार ने आज मतदान वाले सभी क्षेत्रों में सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। असम में ये अंतिम चरण का मतदान है और इन 61 सीटों में ज्यादातर सीटें मुसलमान बहुल क्षेत्र में हैं, जहां अब तक कांग्रेस और मौलाना बदुद्दीन अजमल की AIUDF का दबदबा रहा है। यहां राजनीतिक दलों ने बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर जमकर अपना चुनावी अभियान चलाया है। इसके अलावा भाजपा गठबंधन वाली असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट भी कई सीटों पर काफी मजबूत है, लिहाजा मुकाबला कांटे का बना हुआ है। मुख्यमंत्री तरुण गोगोई इन्हीं अल्पसंख्यक मतदाताओं के बूते राज्य में लगातार चौथी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, जबकि राजनीतिक विशेषज्ञों की राय में इस बार इन क्षेत्रों में मौलाना अजमल की पकड़ थोड़ी कमजोर बताई जा रही है। लेकिन मौलाना पूरी तरह आत्मविश्वास में दिखाई दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में उनकी मदद के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। चुनाव आयोग की एक जानकारी में कहा गया है कि दूसरे चरण में 22 जिलों के 61 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए 12,699 मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 50,796 चुनाव अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। दूसरे चरण में कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,35,277 बताई गई है, जिसमें 50,44,051 महिला मतदाता हैं, जबकि अंतिम चरण के इस मतदान में 525 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। इनमें 470 जहां पुरुष उम्मीदवार हैं, वहीं 48 महिला उम्मीदवार हैं। दूसरे चरण में AIUDF प्रमुख मौलाना अजमल, भाजपा के हेमंत विश्व शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री एवं असम गण परिषद के उम्मीदवार प्रफुल्ल कुमार महंत समेत कई दिग्गज मैदान में हैं।
ये थे गुवाहाटी से दिलीप शर्मा। और आज पश्चिम बंगाल में भी 31 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इनमें 163 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं। यहां पहले चरण का मतदान 4 अप्रैल को हुआ था। और अब चर्चा करते हैं जनता दल यूनाइटेड की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता दल यूनाइटेड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले 3 बार से अध्यक्ष रहे शरद यादव ने अब और ये जिम्मेदारी संभालने से इनकार कर दिया था। शरद यादव का कहना है कि वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर पार्टी को बड़ा बनाएंगे, जो देश की जनता को एक नया विकल्प देगी। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने उनसे बात की और सबसे पहले यही पूछा कि वे अपने कार्यकाल को कैसे याद करेंगे।
मैं तो पिछली बार भी संविधान संशोधन करके बना था। इस बार मैंने साफ कह दिया था पहले कि मैं संविधान संशोधन के बाद नहीं बनूंगा, और इसलिए मेरा विकल्प कोई हो सकता था वो तो नीतीश ही होगी। कार्यकाल तो मैं तो है ना इतिहास का जो सबसे बड़ा, अभी 2014 में भारतीय जनता पार्टी ये NDA जीता था, तो जो बिहार का चुनाव उसमें गठबंधन बनवाया और भारी उनको शिकस्त दी।
तो अब क्यों आप अध्यक्ष नहीं बने रहना चाहते थे?
इसलिए मैं थोड़ा सा रिलीफ चाहता हूँ और ये पहला कदम है। अब मैं जो है वो पूरी तरह से जो देश भर में जो मेरे संपर्क में लोग हैं, जो मेरे साथ जिनका बहुत पुराना रिश्ता है, उन सबसे बात करके एक बड़ी पार्टी बनाने का मेरा भविष्य में बड़ी पार्टी बनाने के का मेरा सपना है, और इसलिए इसको आप मान लीजिए मेरा पहला कदम है।
तो वो बड़ी पार्टी JDU होगी या कोई और नई पार्टी होगी?
नहीं, वो नाम का सवाल नहीं है, यानी पार्टी बड़ी बनाना है, क्योंकि देश में जो इतनी चुनौतियां खड़ी हो गई सामने कि बड़ा अपरेटस चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत आने वाले भविष्य में बड़ी संख्या बड़े पैमाने पे लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा।
ये कौन लोग हैं जिनको आप अपने साथ लेकर
के बड़े लोगों से बात चली हुई है? यानी अजीत सिंह की पार्टी से, आपके बाबूलाल मरांडी की पार्टी जो है उससे बात चली और बहुत दूर तक मतलब मटेरियलाइज भी हो जाएगी। अभी तो फिलहाल 2 पार्टी है।
और लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य अच्छी, इतना बड़ा देश है, जो पार्टी का हथियार है उसको तो विस्तार करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा ना। यानी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी था जनता दल, जो जनता दल यूनाइटेड हो गया, ये सेकंड जनता दल सेकंड लार्जेस्ट पार्टी था, BJP नहीं थी, हम थे सेकंड लार्जेस्ट। लेकिन इसका बिखराव हो गया बड़े पैमाने पर, तो बिखराव को भी कैसे फिर से गोरबंद किया जाए। और अभी मैंने फिलहाल बताया कि 2 पार्टी जो है उनसे मेरी जिनसे हमारी चर्चा जो है वो एक लॉजिकल एंड तक चली गई।
तो इस पार्टी का मकसद ये है कि जो देश में मौजूदा पार्टियां हैं उन सब का विकल्प बनना चाहते हैं हम?
नहीं, हम हमारा है कि जो NDA जो पार्टी है, NDA जो सरकार है, उसके विकल्प को तैयार किया जाए।
सर, कुछ लोगों का कहना है कि पार्टी जो JDU है अब पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के कब्जे में चली गई है।
पहले किसके कब्जे में थी?
पहले आप भी थे।
हम दोनों के बीच में कोई फर्क है क्या? मैं यदि मान लो स्टेप डाउन करूंगा तो नेचुरल वे में हमारी पार्टी की जो तासीर है, जो जनाधार है, उसमें तो मेरा विकल्प नीतीश ही हो सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? आप नहीं सोचेंगे?
कोई और क्यों नहीं?
और नहीं, वर्तमान परिस्थिति हम दोनों ही आदमी इस समय, हमारा बहुत पुराना बहुत लंबे समय का अनुभव है राजनीति में जो है, लंबे समय से जो अनुभव है और जो लोगों में साख हमारी है वो तो हम दोनों की है, तीसरा क्यों नहीं बन सकता? आगे आने वाले समय तीसरा भी हो सकता है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने JDU के अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार की ताजपोशी की कड़ी आलोचना की है। बिहार BJP के अध्यक्ष मंगल पांडेय ने BBC से बातचीत में कहा कि ऐसा करके नीतीश कुमार ने पार्टी को अपनी जेब में रख लिया है।
नीतीश कुमार जी ने JDU को अपने पॉकेट की पार्टी बना ली है, और नीतीश कुमार जी का यह राजनीतिक चरित्र रहा है कि जिसके कंधे पर बैठकर वो राजनीति में आगे बढ़ते हैं उसी के कंधे पे लात मारते हैं। और आज शरद यादव जी की स्थिति उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस की तरह बना दी है। संगत का असर पड़ता है लोगों पे, नया जो संगति उनकी लालू प्रसाद जी के साथ हुई है, या आजकल ममता बनर्जी जी, अरविंद केजरीवाल जी, तो इन सभी लोगों से उन्होंने सीखा है कि सत्ता और संगठन दोनों जगह पे कब्जा करके काम करना चाहिए, और उसका अनुसरण कर रहे हैं।
ये जो कहा जा रहा है कि पार्टी उनके लिए बड़ी भूमिका देख रही है और आने वाले समय में जो है केंद्रीय स्तर पर उनको बढ़ाया जाए, इस लिहाज से
जिस पार्टी के 118 विधायक थे बिहार में वो घट के 71 पे आ गए, और जनता दल यूनाइटेड का किसी राज्य में कोई आधार नहीं है, तो उनका केंद्रीय राजनीति में क्या महत्व होगा? पहले तो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो उस दायित्व का पूरी जिम्मेवारी के साथ निर्वहन करना चाहिए। तो एक जगह अभी ठीक से काम नहीं हो पा रहा है और दूसरी जगह की चिंता कर रहे हैं। इसको यही कह सकते हैं ख्याली पुलाव है उनका और धरातल पे कुछ दिखता नहीं है।
शरद यादव जी के लिए अब क्या बच जाता है?
शरद यादव जी बेचारे जॉर्ज फर्नांडिस की स्थिति में आ गए और जिस प्रकार से जॉर्ज फर्नांडिस को जनता दल यूनाइटेड से बाहर का रास्ता दिखा दिया नीतीश कुमार ने, उसी प्रकार से आगे आने वाले दिनों में शरद यादव जी को भी धीरे से पार्टी से बाहर कर दें। आज अध्यक्ष से हटाए हैं, कल पार्टी से बाहर करें।
क्या शरद जी उनके लिए कोई चुनौती पेश कर रहे थे?
शरद जी चुनौती नहीं पेश कर रहे थे, इनका स्वभाव है कि जिसके सहारे राजनीति में आगे बढ़ते हैं उसको पीछे धकेलने का ये काम करते हैं, ये उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर में रहा है। तो शरद जी के हाथ पकड़ के इन्होंने राजनीति में आगे के कदम बढ़ाए और अब जब शरद यादव जी लगता है कि उनके लिए राजनीति की आवश्यकता नहीं है तो उनको किनारे कर दिया।
ये थे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष मंगल पांडे और उनसे बात कर रहे थे निखिल रंजन।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9,835, 9,915, 11,995 और 15,510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज पर।
भारत के दौरे पर आए ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और डचेज ऑफ कैम्ब्रिज केट कल मुंबई में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने मुंबई में 2008 में हुए हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड के एक कार्यक्रम में शामिल हुए उन्होंने एक झुग्गी बस्ती का भी दौरा किया और बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेली। इस मौके पर सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे। अशोक कुमार से सुनिए एक रिपोर्ट।
पहली बार भारत की यात्रा पर आए ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज का पहला दिन बेहद व्यस्त रहा। सबसे पहले उन्होंने मुंबई के ताज होटल में 2008 के चरमपंथी हमलों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी, फिर एक झुग्गी बस्ती में गए, बच्चों के साथ समय बिताया, खुली बस में सफर भी किया, बॉलीवुड सितारों से मिले और क्रिकेट भी खेला। ये तालियां प्रिंस विलियम की पत्नी केट के लिए हैं जिन्होंने क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की गेंद पर शॉट लगाया है। शाही जोड़े से मिलकर सचिन भी खूब खुश दिखे।
What a fantastic experience it was to meet the Duke and the Duchess and a remarkable couple.
ड्यूक और डचेस से मिलना वाकई शानदार अनुभव रहा। बहुत जबरदस्त जोड़ा है, वो बहुत ही विनम्र और सादा हैं। वो दुनिया भर में अच्छे कामों का समर्थन कर रहे हैं, उनका दिल बहुत अच्छा है और वो जरूरतमंद लोगों के बारे में सोचते हैं। अच्छा लगा कि वो क्रिकेट समझते हैं और हमने T20 वर्ल्ड कप फाइनल पर भी चर्चा की। प्रिंस विलियम और केट की शाम सितारों से सजी थी जब ब्रिटानी उच्चायोग ने शाही जोड़े के सम्मान में दावत दी। इस दावत में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अनिल कपूर, करण जौहर और फरहान अख्तर जैसी बॉलीवुड हस्तियां दिखाई दी। प्रिंस विलियम और केट ने कहा कि भारत की विविधता और यहां का लोकतांत्रिक समाज प्रेरित करने वाले हैं। शाही जोड़ा शनिवार तक भारत में है और इस दौरान वो आगरा में ताजमहल भी देखने जाएंगे।
और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 61 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जबकि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में 31 सीटों पर मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में होने वाली किसान रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने के स्पीकर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है। और IPL में आज किंग्स इलेवन पंजाब और गुजरात लायंस के बीच मोहाली में मुकाबला होगा।
वे सब लोग जिनके नाम पनामा पेपर्स में आए हैं आम जिंदगी में कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। सबके दिल में राष्ट्र और जनता का दर्द कूट कूट कर भरा है, लेकिन जब इन्हीं बुद्धिजीवियों के या उनके परिजनों के पैसे के स्रोत पर सवाल उठते हैं तो ये बुद्धिजीवी फौरन एक छोटे से बच्चे जैसी सफाई पेश करने लगते हैं। पेश है पाकिस्तान से वसदुल्ला खान की डायरी।
अभी तो मोसाक फोनसेका का रिकॉर्ड हैक हुआ है तो इतना उधम मच गया। किसी दिन अगर टॉप 10 टैक्स हेवन्स यानी स्विट्जरलैंड, हांगकांग, यूएस राज्य, डेलावेयर, सिंगापुर, केमन आइलैंड, लग्जमबर्ग, बैरूत, जर्मनी, बहरेन और यूएई के फंड्स मैनेजर्स का रिकॉर्ड हैक हो गया तो क्या होगा? मुझे तो लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के हजारों धनी मुंह छुपाते फिरेंगे। वे सब लोग जिनके नाम अब तक पनामा पेपर्स में आए हैं आम जीवन में कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सबके दिल में राष्ट्र और जनता का दर्द भी कूट कूट के भरा है, मगर जब खुद पे या अपने परिवार की संपत्ति और इस संपत्ति के उद्गम पे सवाल उठता है तो ये बुद्धिजीवी फौरन एक छोटे से बच्चे जैसी सफाई पेश करने लगते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कह रहे हैं, भला मेरा किसी गुप्त ऑफशोर कंपनी से क्या लेना देना, ये तो मेरे बच्चे हैं जिनका अपना कारोबार है, मेरे पास तो अपना घर तक नहीं, रायवंड में माताजी के घर में रहता हूँ और मरी में उस घर में जो पत्नी जी के नाम है, मेरे और छोटे शहबाज शरीफ के पास तो जो दो लैंड क्रूजर्स हैं वो भी किसी सज्जन ने गिफ्ट की हैं, हमारा इतना धन दौलत थोड़ा ही है कि छिपाना पड़ जाए, विश्वास ना हो तो मेरे टैक्स रिटर्न्स देख लें, हर साल 3 लाख 4 लाख हद 5 लाख टैक्स बनता है, इससे ज़्यादा तो आप इनकम टैक्स दे देते होंगे, पता नहीं लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए। अब तक 220 पाकिस्तानियों के नाम पनामा पेपर्स में सामने आए हैं। सब कहते हैं ये कोई बड़ी साजिश है। एक सेनेटर उस्मान सैफुल्ला के परिवार की तो 34 कंपनियां सामने आई हैं, मगर उस्मान सैफुल्ला नेशनल टैक्स रिफॉर्म कमीशन के सदस्य हैं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक का नाम भी पनामा पेपर्स में है, मगर उनका कहना है कि इनका नाम इंडियन एजेंसी रॉ ने डलवाया है। जितनों के भी पनामा पेपर्स में नाम आए हैं सब कह रहे हैं कि ऑफशोर कंपनी खोलना अवैध, अनैतिक या पाप तो नहीं। आप सब जजमान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर ऐसा करें कि पूरे इंडिया का बैंक कानून स्विट्जरलैंड जैसा और पाकिस्तान का निवेश कानून केमन आइलैंड जैसा बनवा दें, ताकि बस 1000-2000 पाकिस्तानी और भारतीय और उनके पुत्र सपुत्र और बेटियाँ ही क्यों, हम सब के सब ऐसे कानूनों का लाभ क्यों ना लें।
वसतुल्लाह खान की डायरी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। अशोक कुमार पूरी तरह तन्मयता से पढ़ के हाजिर हो चुके हैं।
पंकज जी, कल केरल के मंदिर में जिस तरह आग लगने से भारी जानमाल की तबाही और नुकसान हुआ है, वो खबर आज के सब अखबारों की पहली खबर है। जी, नवा टाइम्स ने हेडलाइन दी है, मंदिर में फैली मौत की आग। नई दुनिया लिखता है, पटाखों से दहला केरल का मंदिर। अखबार मंदिर में हुई तबाही का एक बड़ा सा फोटो भी छापता है और इसके साथ ही घायलों का हाल पूछ रहे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी आप अखबार में देख रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, टेंपल इग्नोर्स बैन, फायरवर्क्स शो लीव्स ओवर 100 डेड। यानी मंदिर ने आतिशबाजी पर जो प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया था उसकी अनदेखी की और नतीजा हुआ कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हिंदू कुश से दिल्ली तक हिली धरती, यह हेडलाइन है हिंदुस्तान में, जो कलाए भूकंप के बारे में है जिसे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में महसूस किया गया। नई दुनिया लिखता है कि भूकंप से भारत में तो किसी जानमाल की सूचना नहीं है, लेकिन इस दौरान दिल्ली मेट्रो थम गई। इसके अलावा भारत के दौरे पर आए प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट की तस्वीरें आज के कई अखबारों के पहले पन्ने पर आप देख रहे हैं। हाँ, उन्होंने चौके छक्के लगाती केट, ये हेडलाइन नवा टाइम्स ने दी है। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान ने भी सचिन की गेंद पर शॉट जमाती केट की तस्वीर अपने पहले पन्ने पर छापी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, गॉड के सामने थी केट। गॉड यानी क्रिकेट के गॉड सचिन तेंदुलकर के सामने,
बड़ी ऑब्वियस सी हेडलाइन।
जी, नीतीश कुमार के जेडीयू अध्यक्ष बनने की खबर भी आज के लगभग सभी अखबारों में है। साथ ही अनुपम खेर भी आज चर्चा में है। जनसत्ता की सुर्खी है, अनुपम को NIT जाने से रोका गया, परिसर में शांति। नवा टाइम्स लिखता है, श्रीनगर NIT जाने के लिए दिल्ली से रवाना हुए 150 छात्रों को भी जम्मू कश्मीर में दाखिल नहीं होने दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली की प्रियदर्शनी चटर्जी के मिस इंडिया बनने की खबरें भी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। और एक खबर अमर उजाला में, बुंदेलखंड के सूखा पीड़ितों के खाते में एक हफ्ते में पहुंचेगी राशि, ऐसा कहा है केंद्र सरकार ने। और एक खबर ऐसी भास्कर में जो कहती है, शिमला में भी सूखा और होटलों में पानी की बाल्टी 100 रुपये तक में पर्यटक खरीदने को मजबूर हो गए।
और कल मैं भी कहीं पढ़ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब केरल जा रहे थे तो वो अपने विमान पर डॉक्टरों की एक टीम लेकर गए प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए, और ये सारे डॉक्टर बर्न्स स्पेशलिस्ट हैं जो जले हुए का इलाज करते हैं, तो इस कदम की भी सराहना होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार आपका। और अब पेश है सप्ताह भर के खेलों पर कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। पिछले दिनों 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट समाप्त हुआ। अब IPL 9 का जलवा भारत में शुरू हो चुका है, जहां कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली डेयर डेविल्स को बेहद आसानी से 9 विकेट से मात दी। वैसे भी कोलकाता के सामने ले देकर केवल 99 रनों का लक्ष्य था और वो किसी फेर में न पड़कर दिल्ली डेयर डेविल्स के बड़े सितारों को नाकाम करने में कामयाब रही। कल गौतम गंभीर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जो उनके गेंदबाजों ने सही साबित किया। दिल्ली का पुलिंदा केवल 98 रनों पर बंधा, वो भी 17.4 ओवर में ही, और यही मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2020 विश्व कप के फाइनल के हीरो वेस्ट इंडीज के कार्लोस ब्रैथवेट कल केवल 6 रन बना सके। क्विंटन डिकॉक ने 17 और संजू सैमसन ने 15 रन बनाए। कोलकाता के आंद्रे रसेल ने 24 रन देकर 3, ब्रेड हॉज ने 19 रन देकर 3 और पीयूष चावला ने 21 रन देकर 2 विकेट झटके। कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान गौतम गंभीर 37 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि उनके जोड़ीदार रोबिन उथप्पा ने अमित मिश्रा की गेंद पर क्रिस मॉरिस के तो कैच होने से पहले 35 रनों की उपयोगी पारी खेली। कोलकाता की इस शानदार जीत पर पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज विजय दहिया ने कहा,
जी बिल्कुल शानदार जीत, और हर फील्ड में आप देखें तो शानदार गेंदबाजी बहुत बेहतरीन रही, फील्डिंग टॉप क्लास, और उसके बाद दोनों ओपनर्स ने रन बनाए, और ऐसे मैच के अंदर, शुरुआती मैचों के अंदर अगर आप रन बनाते हैं तो फिर आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता है। और दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं कोई गेम प्लान नजर ही नहीं आया। 2 साल पहले गैरी कर्स्टन टीम के साथ आए थे तो शायद दिल्ली ने ये सोचना शुरू कर दिया था गैरी आ गए, गैरी कर्स्टन या राहुल द्रविड़ मैच नहीं जिताने वाले। मुझे लगता है कि अभी भी एक ऐसी टीम है जो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, टूर्नामेंट में वापसी कर सकती है, लेकिन सही तरीके की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, सही तरीके की प्लेइंग 11 का चयन करना पड़ेगा, जो नजर नहीं आया इस मैच में बिल्कुल भी।
आज किंग्स 11 पंजाब का सामना गुजरात लायंस से होगा। और अब बात बैडमिंटन की। मलेशियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब दूसरी वरीयता हासिल मेजबान मलेशिया के ही ली चोंगवेई ने कल अपने नाम किया। फाइनल में उन्होंने शीर्ष वरीयता हासिल चीन के चेन लॉन्ग को 42 मिनट में ही बेहद आसानी से 21-13, 21-8 से हराया। दूसरी तरफ महिला एकल वर्ग का खिताब चौथी वरीयता हासिल थाईलैंड की रत्चानोक एंतनोन ने जीता। उन्होंने चीन ताइपे की तेईजू यिंग को 39 मिनट में 21-14, 21-15 से मात दी। उल्लेखनीय है कि तेईजू यिंग ने सेमीफाइनल में तीसरी वरीयता हासिल भारत की साइना नेहवाल को हराकर बड़ा उलटफेर किया। और अब बात हॉकी की। मलेशिया में खेले जा रहे सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कल कनाडा को 3-1 से मात दी और उसके साथ ही उसकी गाड़ी जीत की पटरी पर वापस लौटी। इससे पहले भारत ने इस टूर्नामेंट में जापान को 2-1 से हराया, लेकिन अगले ही मुकाबले में उसे ऑस्ट्रेलिया ने 5-1 से धो डाला। भारत के लिए कल थिमैया, हरमनप्रीत सिंह और तलविंदर सिंह ने गोल किए, जबकि कनाडा का एकमात्र गोल कीगन पेरियरा ने किया। अब भारत का अगला मुकाबला कल पाकिस्तान से होगा। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
और अब कार्यक्रम के अंत में सुनिए मुख्य समाचार।
BBC समाचार। केरल में पुलिस ने कहा है कि कल एक मंदिर में आग लगने से 100 से ज्यादा लोगों की मौत के मामले में आपराधिक जांच शुरू हो गई है। कल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनसे भारत में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, जबकि पाकिस्तान में 3 लोगों के मारे जाने और 30 से ज्यादा के घायल होने की खबर है। लातिन अमरीकी देश पेरू में राष्ट्रपति चुनाव के एग्जिट पोल से संकेत मिलता है कि काइको फुजीमोरी ने वोटिंग का पहला चरण जीत लिया है, लेकिन उन्हें दूसरे दौर के चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। यमन में सरकार समर्थित बलों और विद्रोहियों के बीच 1 साल से जारी लड़ाई के बाद संयुक्त राष्ट्र के समर्थन वाला युद्ध विराम लागू हो गया है। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं खत्म होता है। स्टूडियो संभाला शाकिर आलम ने। पंकज प्रियदर्शी को अनुमति दीजिए आपसे ठीक एक घंटे बाद 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।